ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। cibc.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। सीआईबीसी, एम्बिशंस मेड रियल।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/culturedays ਤੇ ਜਾਓ।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities, Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
वेलकम बैक तमाम सामेईन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और खट्टी मीठी खबरें लेकर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं शाजिया मलिक साहिबा। जनाब, हमारा और आपका यह सिलसिला आज भी 7:30 बजे तक जारी और सारी रहेगा। और अगर आप हमें टेलीफोन लाइन पर सुनना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां गड्ढे ज्यादा हैं, कोई तारे ज्यादा हैं और रेडियो सही नहीं सुनाई दे रहा, तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 पर डायल करके आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनाई देगी। जनाब, आज भूली बिसरी यादें आप 7:30 बजे सुनिए, अजान मगरिब टोरंटो उसके मजाफात में आज अजान मगरिब 7:10 पर है, तो उसके बाद दुआ होगी, फिर एंड सेगमेंट। तो आप नंबर डायल कर लीजिएगा जनाब जो हमें टेलीफोन लाइन पर सुनना चाहते हैं 6478724900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा IPTV eawaz टीवी उर्दू और पाकिस्तानी में आपको कैटेगरीज में मिल जाएगा, तो आप वहां भी ये भूली बिसरी यादें देख सकेंगे। और जाहिर है जब देख रहे हैं तो आवाज भी आ रही होगी टीवी पे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी तस्वीर आ रही हो और आवाज ना आ रही हो टीवी पे, नहीं जनाब आप देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे। तो ये था इस हफ्ते के लिए यानी आज के लिए भूली बिसरी यादों का टाइम स्केड्यूल। अब इस टाइम हो गया है आपके ब्लड प्रेशर को बल्कि आप लोगों के तो नॉर्मल करने के लिए ना मेर आप लोगों को तो इससे नॉर्मल होता है आपका होमोग्लोबिन बढ़ता है इन सब चीजों से तो वो बोतल ले आते हैं प्रोग्राम में। नहीं वो बोली बोतल नहीं अबे खून की बोतल भाई जान खून की बोतल जो आपका खून बढ़ाएगी वो है हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल वन एंड ओनली शाजिया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS आज तो तुम जो है बड़े ज़ेलेंस्की बने हुए हो क्या चक्कर गया तुमको
कल आप कह रहे थे कंजर्वेटिव हो गए हो आज कह रही हो ज़ेलेंस्की
तुम्हारे हालात तो ठीक नहीं है मुझे लग रहा है तुम्हारे हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं दिन है? दिन हाँ हाँ कल तुम कंजर्वेटिव बन के आए आज तुम ज़ेलेंस्की बन के आए हुए हो ये क्या चक्कर क्या चल रहा है
ये चक्कर है मुझे
लीडरों से इतने तुम कोई इम्प्रेस हो गए हो देखो
मेरा हमेशा से ये रहा है कि अपने कामयाब जो भी दुनिया भर में कामयाब लोग
फील लाइक शाहरुख खान नहीं करना फील लाइक ज़ेलेंस्की भी करना
कोई भी मैंने कहा ना कोई भी कामयाब शख्स हो या कोई कामयाब खातून हो उनको हमेशा फॉलो करना।
अच्छा अच्छा तो मार्गरेट थैचर को कितना फॉलो किया
वो अभी लिस्ट में नहीं है।
अच्छा लिस्ट में तबू है ना क्योंकि ये आलिया भट्ट है तो जाहिर है दीपिका पाडुकोन है तो जाहिर है तुमने उसको करना है।
मैं वही बात है ना कि वो मुझे फॉलो करे ना
अच्छा
मैं उसको क्यों फॉलो करूं हॉलीवुड मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता।
अच्छा 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 बॉलीवुड की है वैसे
ये बॉलीवुड भी नहीं रखता मतलब आर्ट इंडस्ट्री जितनी भी है वो क्या होता है ना देखें मसला क्या आप अपने आप को इस लेवल पर लाए आप कितने लोगों को जानते हैं ये मैटर नहीं करता मेरे लिए मुझे कितने लोग जानते हैं ये मैटर करता है। तो ये ज्यादा ये मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया कि बेटा इतने लोग तुम्हें जानते हैं ये
कितने ऑलवेज
उस्ताद और मैं उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। गलती होती है इंसान है गलती का पुतला है लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ
जी जी
कि आप ये मेरे लिए नहीं मैटर करता कि यार मैं कितने लोगों को जानता हूँ बिल्कुल मतलब मैं आपको जानता हूँ मेरे लिए मैटर नहीं करता लेकिन आप मुझे जानते हैं ये मैटर करता है।
लेकिन खुशकिस्मती तो तुम्हारी है कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो।
हाँ ये अब आपके लिए खुशकिस्मती है
नहीं तुम्हारे लिए
मेरे लिए रात की क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि मैंने आरफा अपा माजिद भाई और अल्लाह मियां से वो एक एग्रीमेंट किया हुआ है।
अच्छा
मैं कहा यार बस कुछ भी हो हालात वो मैं सेटिंग कर लूंगा इंशाल्लाह अल्लाह करा देगा रात की नींद के लिए कुछ बेहतरी कुछ ऐसा क्या करूं हाँ। तुम शाजिया के साथ न्यूज कर लिया करो हाँ। रात की नींद सही रहे
लेकिन रात की ये नींद का तुमने सामान नहीं किया हुआ ये तुमने जन्नत का सामान किया हुआ
वो देखिए एयर पे नहीं बताना होता ना अपने रिसोर्सेज नहीं खोलने होते अपने बंदे का नाम भी लेना पड़ जाएगा
सॉरी
ये अपने अपना
ठीक है
जन्नत अपनी अपनी दो जगह आपकी
बंदा बंदा अपना अपना
इस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं
तो बस फिर तुम्हें तहर नहीं दिया जा रहा वहां तो अल्लाह ने कहा प्लॉट में ढूंढा
हाँ, नहीं देखो फिर तो वहां सीधा सीधा अल्लाह ने कहा है कि जनाब किस न बाप को बेटे की फिक्र होगी ना बेटे के बाप को होगी ना माँ को बेटी की ना बेटी की माँ को तो आप और मैं तो किसी खाते में ही नहीं आते मैं आपको क्यों बचा लूंगा।
नहीं नहीं मैंने तो आंखें वैसे भी पट्टी लगा के मैंने तो दूसरी तरफ वैसे भी निकल जाना
हाँ वो तो आपका वो मिलूनी गुलूनी मतलब कौन कौन से दिन की तस्वीरें
आपके
मरोनी
वो होगा वहां पे
चलें जी
इसलिए हमने
फिर हम आपको ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे
हाँ हाँ हिलाते रहना बिल्कुल ऐसे हिलाते रहना और हम तो परवाह ही नहीं करेंगे आपके हाथ हिलाने की भी कोई बात नहीं इधर हमें चार लोग जानते हैं उधर हमें ज्यादा लोग जानेंगे।
अच्छा वहां भी आप सोचो छह बजे गरीब शाम में हाँ। लोग बैठे होंगे यार अभी वहां के हालात वहां के हालात बताएंगी गर्मा गर्म
जो दस मिनट का जो रिश्ते जो है वो देंगे ना
ब्रेक
ब्रेक देंगे उसमें सारे जन्नत वालों को
खबरें मिलेंगी
दो दिन की खबरें
सोचे यार वहां भी आपका रोल खबरें आओ या अल्लाह
दो दिन की खबरें
अल्लाह क्या खबरें सुना रही
क्या खबरें होंगी
साउंड इफेक्ट
साउंड इफेक्ट क्या वहां पे तो लोगों के साथ लोगों को सामने ला ला के ये देखो दीपिका पादुकोण ने ये किया और ये इसने ये किया और ये किया और लोग तो इतने सारे जन्नत वाले जो है वो मौलवियों के साथ बैठे होंगे हम तो ये बड़े एक्साइटेड किस्म के लोगों के साथ एक्साइटेड बैठे होंगे
आपके बेहतरी करे और यही दुआ कर सकते हैं।
हाँ जी
मुझे सोचा था कि हाँ अगर आपको वहां भी न्यूज सुनाने का प्रोफेशन दे दिया जाए अल्लाह दे दे आपको दे अल्लाह की मर्जी है भाई इंसान को कुछ भी दे दे और आपको तो कैसी आप शाम छह बजे की खबरें सुना रही होंगी
बिल्कुल बिल्कुल
समय डिफरेंट होगा वो
बिल्कुल, और वो देखें वो, और मैं आपको समा बांध के बता देती हूँ कि समा कैसा होएगा। एक लंबा सारा डंडा होएगा, उस डंडे पे मैं बैठी होंगी, नीचे सारे जनती और दोस्ती होंगे और ऊपर मेरे पास लाउड स्पीकर होएगा और वहां से मैं खबरें सुनाऊंगी और सारे ऐसे करके सुनेंगे देखेंगे और जो है जो जन्नत वाले अपनी खुशकिस्मती में खुश होंगे, हमारे वाले जो है वो इस बात पे बस खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है ऐसे सारे नालते हैं ना, कठे थे हैं।
अच्छा वहां भी एक सीन होगा?
हाँ।
अब जाहिर है आप न्यूज सुना रही हैं तो फिर कमेंट्री तो मेरी होगी तो वहां भी कोई ना कोई कॉल कर देगा।
हाँ।
ओ भाई यानी अपनी कमेंट्री बंद करो, हमें न्यूज सुननी है।
हाँ जी हाँ जी,
कोई इंसान कहीं भी हो वही लगता है कि न्यूज के बगैर वो नहीं रह सकता, चाहे उसके कोई मामला ना हो उस पर।
बिल्कुल, चलो जी हम न्यूज से फिर
खबरें सुना दे।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और जनाब आपके कल मुझे तीन मैसेजेस आए, तीन ही आए। बहरहाल जी थैंक यू वेरी मच, आपके तीन मैसेजेस का आपने कल वो जो लेबनान पे रिपोर्ट थी वो आपने बड़ी पसंद की, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। भाई हमें तो सिर्फ तीन या चार लोग ही जो है ना वो करते हैं, आपको 10,000 करते हैं, तो अब हम जो है क्या कर सकते हैं। बहरहाल फिर भी बड़ी बात है। ठीक है अच्छा जी, अच्छा जी, दिस पॉडकास्ट प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स, और ये इनके पास बड़े जबरदस्त 22 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी होते हैं और ये इंडिया पाकिस्तान दुबई और सिंगापुर से लेके आए हैं। वो कहते हैं आपके कोई भी फैमिली का ओकेजन है, आप यहां से गोल्ड का कुछ भी गिफ्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यहां पे होते हैं असलम भाई, असलम भाई को फोन करें एट 9057907879। इसके अलावा ओंटारियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, दो रेस्टोरेंट्स हैं इनके जो है फैसल चट्टा साहब के, एक मिसेस सागा में, उसका नंबर है 9052323663, और एक है लेक शोर सॉरी ओकविल में लेक शोर पे, तो वहां पे आप कॉल कर सकते हैं इनको एट 9052262294। और जनाब अगर आपके पास बच्चे हैं और उनका एज जो है वो 12 साल है तो आपको 12,000 से 60,000 के गवर्नमेंट के ग्रांट्स मिल सकते हैं। आप शावेज को कॉल करें एट ए कंसल्टेंट्स इंक एट 6477690241, उसके ऊपर आप कॉल कर लें। ठीक है जनाब, ओके जी, हम आपको बताएं कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं मैक्रों साहब वो पहुंचे हुए हैं यहां पे ओटावा में, और आज उन्हीं के साथ मुलाकातें जो थी कर रहे थे ट्रूडो साहब, और ट्रूडो साहब जो हैं वो इधर मतलब एक छोटा सा उनका वो ट्रिप था जो है मैक्रों साहब का मॉन्ट्रियल में, और जो है मैक्रों साहब लास्ट नाइट यहां पे न्यूयॉर्क से आए थे और फिर उन्होंने एक इनफॉर्मल डिनर किया था ट्रूडो साहब के साथ उनके घर पे एट रेडियो कॉटेज के ऊपर, और दोनों जो थे फिर उसके बाद उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग्स जो है वो पार्लियामेंट हिल के ऊपर दिस मॉर्निंग की, उसके बाद फिर जो है वो जो क्यूबेक चले गए वहां पे डिग्निटीज के साथ मिले और वहां पे उन्होंने पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल जो है उसको देखा। उसके बाद दोनों जो लीडर्स हैं वो आपको पता ही है कि उनके कंट्री के जो दोनों मुल्कों में ही पॉलिसीज इस वक्त चल रही हैं, फ्रांस में भी और यहां पे कनाडा में भी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं मगर जाहिर है कि उनको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है दोनों ही कंट्रीज में ये लोग कर रहे हैं। और ये अभी जो एक फ्रांस ने एक फ्रांस के सेनेट ने एक रिजेक्ट की थी यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील विद कनाडा, और मैक्रों साहब जो हैं उसके बड़े खिलाफ थे तो उसके ऊपर इन्होंने बातचीत की। मैक्रों साहब का जो लास्ट विजिट था कनाडा में वो 2018 था और वो आए थे G7 की मीटिंग्स के लिए, तो ये काफी दोनों जो हैं क्लोज हैं। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट इन्होंने की थी कंजर्वेटिव पार्टी ने कि नो कॉन्फिडेंस मूव लाया जाए और ट्रूडो साहब को हटाया जाए, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुई, हमने आपको बताया ही था कि वो फेल हो गई थी। अब आज उन्होंने फिर से वो लेकर आए हैं, ये जो फॉल्स सिटिंग हाउस ऑफ कॉमन्स की चल रही है अभी भी, और इसमें कंजर्वेटिव एमपी जो है लूक बर्टहोल्ड उन्होंने ये लेकर आज सामने आए हैं, क्योंकि पॉलीएफ साहब जो है वो उस वक्त नहीं थे, लेकिन पॉलीएफ साहब कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि जी हम हाउसिंग की कॉस्ट नीचे लाएंगे, हम फूड के को जो है उसके ऊपर टैक्सेस नीचे लाएंगे, हम ये जो क्राइम है इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, सारा कुछ जो है सेंटर से आता है, प्रोविंसेस के पास इतनी जो है फैसिलिटी यानी कि आजादी नहीं है, तो वो कहते हैं जी हम ये सारा कुछ फिक्स करेंगे। अब जो एमपीज हैं वो आज इस मोशन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इसके ऊपर वोटिंग जो है नेक्स्ट ट्यूजडे को यानी कि नेक्स्ट वीक जो ट्यूजडे है उस पर होगा। इसके बाद कंजर्वेटिव्स एक और उनके पास चांस होगा नो कॉन्फिडेंस मूव लाने का बिफोर क्रिसमस, तो अब उसमें इनका क्या एजेंडा रहता है और ये कितने कामयाब होंगे वो उस वक्त फिर हम आपको बताएंगे। न्यू चेंजेस टू कनाडाज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम जो है वो आज से जो है वो शुरू हो गया है, और आपको पता ही है कि ये जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट अब स्टॉप कर देगी प्रोसेसिंग ऑफ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको के LMIAs भी कहते हैं। ये खासतौर पे फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स के लिए जो लो वेज स्ट्रीम के अंदर आते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% जो है वो बढ़ गया है। ये चीज रोकेगी एम्प्लॉयर्स को कि वो ये जो टेम्पररी वर्कर्स हैं इनको ये नहीं हायर कर सकेंगे, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और इसलिए ये इनको ये नए रूल्स जो हैं प्रोहिबिट करेंगे कि ये 10% से ज्यादा जो अपनी वर्कफोर्स है उसमें भी टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो हैं उसको नहीं कर सकते। टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो हैं ये प्रोग्राम जो है इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो लो इम्पैक्ट लो वेज के जो लोग हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर होंगे, और ये वो लोग होते हैं जिनको के एम्प्लॉयर्स जो हैं जो कि मीडियन जो वेज होती है, यानी कि अगर ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कहा जी $15 पर आवर तो ये इनको उससे कम मिलेगा, किसी ने कहा क्यूबेक में जैसे मीडियन जो है वो $27.47 पर आवर है, तो अगर ये वहां पे जो आम बंदा ले रहा है तो फॉरेन वर्कर जो है ये टेम्पररी फॉरेन वर्कर उसको वो बहुत ही कम कोई 15-16 इस तरह करके देंगे। तो इस तरह से ये है मॉन्ट्रियल के अंदर ये जो LMIAs की एप्लीकेशन है ये प्रोसेस करना शुरू करेंगे अब March 3rd से नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद जो है ये लोग अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अभी इस वक्त जो है फ्रीज किया गया इस चीज को, विच इज वेरी गुड, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मुल्क में हैं उनको जॉब्स ही नहीं मिल रहे हैं जी, बाकी ये सारे टेम्पररी वर्कर्स जो हैं आके उन्होंने जॉब्स पकड़े हुए हैं। एक यूनियन जो कि रिप्रेजेंट करती है कुछ एलिमेंट्री स्कूल्स को ट्रोनो में, उन्होंने डग साहब को आज बड़ा खींचा है और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो फर्स्ट नेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और ये डायवर्ट हमेशा करने की कोशिश करते हैं। ETT जो लोकल ब्रांच ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो है, उन्होंने कहा जी कि ये जो फोर्ड साहब के जो कमेंट्स भी हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो जो एक इवेंट हमने कराया था ग्रासी नैरोज के ऊपर ऑफ द फर्स्ट नेशन, तो उससे ये चीजें हटाने की अटेम्प्ट की जा रही है। हुआ ये था कि जो कोई 15 स्कूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे ग्रासी नैरोज रिवर रन में सितंबर 18 में, और उसके बाद ये जो मार्च था ये हुआ था वहां पे क्वींस पार्क की तरफ, जिसमें के उनकी करना चाहते थे ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे कि जो कुछ यहां पे हो रहा है यानी कि जो वाटर के अंदर मर्करी पॉइजनिंग हो रही है उसकी तरफ आप ध्यान दें। अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज आए उसमें देखा गया कि कुछ लोग और भी बच्चे जो हैं इसके अंदर शामिल हो गए थे, फर्स्ट नेशंस के खाली नहीं थे, और वो कह रहे थे कि फ्रॉम टर्टल आइलैंड टू पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन इज अ क्राइम, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत एतराज किया। उन्होंने कहा जी एक तो नंबर वन स्कूल ने इनको क्यों नहीं रोका, और उसके बाद जो है इन्होंने मोर्चा भी निकाला टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के बाहर कि भाई आप इस तरह की चीजें कैसे अलाउ कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नेशंस अपने मसले की बातें कर रहे हैं उसके अंदर भी आप पैलेस्टाइन को लेकर आ गए हैं। फोर्ड साहब ने हालांकि इसके ऊपर कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये छोटे छोटे बच्चों को बगैर उनके पेरेंट्स के परमिशन के ये कैसे ले आए हैं, दिस इज वेरी डिसगस्टिंग, और ये जो था ये तो फर्स्ट नेशंस के लिए जो ग्रासी नैरोज फर्स्ट नेशंस का जो इवेंट था उसके लिए था, तो आप जो हैं उसमें पैलेस्टाइन का मुद्दा कैसे लेकर आ गए हैं। बहरहाल जी एजुकेशन मिनिस्टर जिल डनलॉप जो हैं अब नई जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑन्टेरियो की, उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और हम इसके ऊपर प्रोब करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या है। टोरंटो के अंदर जनाब एक नया लेकिन टेम्पररी स्टेडियम साइज का एक सीजनल कॉन्सर्ट वेन्यू जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके के अंदर 50,000 लोग जो हैं वो बैठ सकेंगे। ये रॉजर्स स्टेडियम जो है ये खुलेगा जून 2025 में, और इसको खोलेंगे फॉर्मर डाउन्स व्यू एयरपोर्ट लैंड्स पे, ये लाइव नेशन जो है उसने अनाउंस किया है। ये जो है ये नियर बाय है डाउन्स व्यू पार्क के पास, जो कि काफी होस्ट करते हैं बड़े बड़े इवेंट्स, जिसमें कि SARSS टॉक इन 2023 जो इवेंट यहां पे कराया गया था कॉन्सर्ट जो ओपन एयर वो काफी अच्छा रहा था। तो ये जो ओपन एयर फैसिलिटी है ये तकरीबन 44 एकर्स की है, और इसको पहले बॉम्बार्डियर यूज करता था, और अब वो कहता है जी कि ये जो स्टेडियम है यहां पे इस तरह का बनाया जाएगा। पता नहीं है कि ये स्टेडियम जो है ये कब से कब तक ऑपरेशनल रहा करेगा, सिर्फ समर में रहेगा विंटर्स में रहेगा क्या है, लेकिन अलबत्ता ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, इसमें हजारों जो है प्रोविंस कहता है जॉब्स क्रिएट होंगी, $80 से $100 मिलियन का टूरिज्म इसमें आएगा। 2018 में बॉम्बार्डियर जो है उसने ये सेल कर दिया था टू टाउन्स व्यू एयरपोर्ट लैंड्स वालों को, और फिर उन्होंने कहा था जी कि ये $30 बिलियन का जो मिक्स्ड यूज अर्बन स्पेस है ये 3 डेकेड्स में डेवलप किया जाएगा, और ऑल टुगेदर जो पूरा एरिया है वो तकरीबन 370 एकर्स है और इसके अंदर वो कहते हैं जी कि 7 डिफरेंट नेबरहुड्स जो है वो आ सकते हैं और तकरीबन 55,000 लोग जो है वो भी रह सकते हैं। तो जो है ये काफी मेजर जो है आज की डेवलपमेंट और अनाउंसमेंट है यहां पे, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा को क्रिकेट स्टेडियम्स की, इस तरह के कॉन्सर्ट वेन्यूज की बहुत ज्यादा जरूरी है, फैसिलिटीज बिल्कुल ज्यादा इधर अच्छी नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी, और इसके मुताबिक यूएस हाउस स्पीकर जो है माइक जॉनसन, उन्होंने आज बड़ा एक गुस्से का लेटर लिखा है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को, और उन्होंने कहा है कि तुम अपना जो एम्बेसडर है टू यूएस उसको एक सेकंड के अंदर जो है फायर करो, क्योंकि इन्होंने जो जेलेंस्की साहब ने विजिट किया था एक एम्यूनिशन का प्लांट, एक जो ये स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया की वहां पे, और उसको माइक जॉनसन ने कहा कि ये तुम्हारा पॉलिटिकल स्टंट है। जेलेंस्की साहब जिस वक्त स्पीच कर रहे थे यूएनजीए में न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये यूएस के विजिट के ऊपर आए हुए हैं, तो उस वक्त इन्होंने कहा जी कि मैं कैपिटल हिल में भी आऊंगा और वॉर के ऊपर बात करूंगा, फिर बाइडन साहब से भी मुलाकातें करूंगा, और फिर उसके बाद जो है ये जो एम्यूनिशन प्लांट है इसको देखने के लिए ये चले गए, और जो लोकेटेड है स्क्रैंटन के अंदर, जो कि बाइडन साहब का होम टाउन भी कहा जा सकता है, और वैसे तो डेलावेयर है आपको पता ही है, तो ये भी एक है वन ऑफ द टाउन होम्स। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बिल्कुल क्लियर इंटरफेरेंस है इलेक्शंस के साथ, और इनको किसने इजाजत दी, और ये जो एम्बेसडर था इनका ओक्साना मार्कारोवा, इन्होंने ये कैसे ऑर्गेनाइज किया और ये बताया क्यों नहीं। एक आर्मी ऑफिशियल जिसने कि एसोसिएटेड प्रेस से बात की, उसने कहा वैसे तो जी उस इलाके के जो रहने वाले जो होते हैं जो सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको हम बुलाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो स्टेट के गवर्नर थे जॉस शपीरो और सेनेटर बॉब केसी और डिस्ट्रिक्ट के जो रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं मैट कार्टराइट, वो सब यहां पे आए हुए थे, तो दूसरों को यहां पे बुलाना कुछ जरूरी नहीं था, क्योंकि जो इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने कहा जी कि लोगों को प्रॉपर इनविटेशन नहीं दिया गया था अगर ये वहां पे जा रहे थे, तो उसी का जवाब वो दे रहे थे कि जो उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं को बुलाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अब ट्रंप साहब ने भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किए हैं, उन्होंने कहा जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का आदमी है, ये अमरीका आता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके हमसे चला जाता है और वॉर को आगे 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 बढ़ाता जा रहा है और डेथ और डिस्ट्रक्शन ला रहा है, ये तो इसके पास बड़ा अच्छा मौका था कि जिस वक्त ये यूनाइटेड नेशंस में भी आया है और यहां पे यूएस में भी आया तो ये वॉर को बंद करने की बात करता, और ये कह रहा है जी कि हम अपना रीबिल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह की हालत यूक्रेन की हो गई, जितना वो डिस्ट्रॉय हो गया उसको रीबिल्ड करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जो हैं चाहिए हैं, तो ये वॉर को रोकने की बात यहां पे करनी चाहिए थी बजाय इसके कि मैं और एम्यूनिशन मुझे चाहिए और आप हमारे साथ खड़े हो। तो काफी ट्रंप साहब ने इनके ऊपर जो है वो एतराज किया। अच्छा जनाब, हम रोते हैं, पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है, ये ब्लूमबर्ग की आज रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, आपको पता ही है कि जर्मनी जो है वो यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी है, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोप की, द बिगेस्ट सबसे बड़ी यूरोप की इकोनॉमी जो है वो जर्मनी है, इसका जीडीपी जो है बेतहाशा श्रिंक करता जा रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि इकोनॉमी की हालत भी बेइंतहा खराब है। जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया बाय 1% इन 2024, मार्च में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 1% जो है ये नीचे जाएगा। जर्मनी की जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है वो उसका, वो कहते हैं जी सबसे बड़ा चूंकि सेक्टर ऑटो सेक्टर था तो वो बहुत बुरी तरह से हिट है, क्योंकि जो बहुत सारे चीप चाइनीज कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ गया, तो उसकी वजह से जो है ये बहुत इसको असर पड़ रहा है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमी है जर्मनी की नीचे 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 आ रही है। वो कह रहे हैं जी कि ये इनकी जो इसकी वजह से, जर्मनी की वजह से बाकी भी जो 20 नेशन ब्लॉक है यूरोप का उसके अंदर भी बहुत ज्यादा खराबी आएगी। इनका जो की बैंक है स्टेट बैंक जो है बंड्स बैंक, उसने वार्न किया है कि ऑलरेडी जर्मनी रिसेशन में है। यस, यू हैव हर्ड मी राइट, उनके सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जर्मनी इज ऑलरेडी इन रिसेशन, और इनकी जो है अब जो थर्ड क्वार्टर है उसमें भी इनके जो है कॉन्ट्रैक्शन आई, और रिसेशन उसी वक्त होता है जब आपके तीन जो क्वार्टर्स हैं उसके अंदर वो श्रिंक करें, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर भी इनका जो है वो श्रिंक आया है 0.1% से, विच इज अ डिक्लाइन फ्रॉम क्वार्टर सेकंड क्वार्टर आल्सो, और वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चाइनीज कंपेटिटर्स आ गए हैं मार्केट में वो इनको बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जो है जीडीपी इनका, वो कहते हैं कि शायद एक्सेलरेट करे 0.8% से, लेकिन फिर भी जो यहां पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे जर्मनी में वो कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में 1.4% से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, जो कि अब कहा जा रहा है कि नहीं, सिर्फ 0.8% से करेगा। तो वही जैसे मैं आपको कल अब पाकिस्तान की मिसाल बता रही थी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2.3% سے جو ہے اس کی جی ڈی پی رائز کرے گی. تو یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس اکانومی میں کتنی اسٹرینتھ ہے. ایک اچھی پالیسی اگر اس میں آ جائے, اچھے پالیسی میکرز آ جائیں, تو آپ سوچیں کہ پاکستان کیسے زمین سے اٹھ کے آسمان کے اوپر جا سکتا ہے. بٹ بیڈ پالیسیز, ریمپٹ کرپشن اور کوئی ول نہیں ہے ملک کی حالت ٹھیک کرنے کی, اس کا حال دیکھیں. تو یہ جو یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے اس کا حال دیکھیں, نیکسٹ ایئر بھی 0.8% جی ڈی پی اس کا گرو کرے گا, کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان 2.3. ظاہر ہے کہ ہم انڈیا اور چائنا کی بات نہیں اس وقت کر رہے. یہ ایسوسیٹڈ پریس کی جناب یہ ایک اور رپورٹ ہے, اور اس کے اندر نتن یاہو صاحب نے پھر سے کہا ہے کہ ہم بالکل جو لیبنان کے اوپر سٹرائکس ہیں وہ جاری رکھیں گے, اور حزب اللہ کے ساتھ کوئی ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نتن یاہو صاحب جو ہیں, نیو یارک کے یونائیٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا میٹنگ ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے یو ایس, کینیڈا, یورپین آفیشلز اور بھی بہت سارے کنٹریز جو ہیں یورپ کے, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ 21 ڈے کا ہالٹ ہونا چاہیے بٹوین اسرائیل حزب اللہ, اور اس کے لیے یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہے. فارن افیئرز منسٹر جو کینیڈا کی ہیں میلانی جولی صاحبہ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ لیبنان کے اندر یہ جو اسرائیل کے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں 2 کینیڈینز کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پھر اس کے بعد آئی کینیڈا, یو ایس, آسٹریلیا, ای یو, یو اے ای اینڈ 8 ادر کنٹریز, انہوں نے کہا کہ ان دونوں کنٹریز کو سیز فائر کرنے کی امیڈیٹلی ضرورت ہے. آن دا سائڈ لائنز آف یو این جی اے پھر فرانس جو تھا اس نے بھی جوائن کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل انٹالریبل ہے کہ یہ جو فائٹنگ ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ریجنل ایسکلیشن جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یو ایس آفیشلز جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ حزب اللہ جو ہے وہ جب ہم یہ یعنی کہ سوچو ذرا, یو ایس کی پتہ نہیں اپنی دنیا میں ہے, یو ایس کہتے ہیں جس وقت ہم یہ پروپوزل لائیں گے تو اس کے اندر, اس پروپوزل کے اندر ہم حزب اللہ کو بالکل نہیں بٹھائیں گے, ہم لیبنیز گورنمنٹ کو کہیں گے کہ تم حزب اللہ سے بات کرو اور تم ان کے بہاف پہ جو ہے یہ چیزیں ساری ہمارے ساتھ ڈسکس کرو. واہ جی واہ, کیا بات ہے. نتن یاہو صاحب جو ہے انہوں نے یو این جی اے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے اب کل فرائیڈے کے دن, اور آپ دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. ابھی تک جو حزب اللہ ہے اس نے تو بھی رسپونڈ نہیں کیا ہے, لیکن لیبنان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں نجیب مکاتی, انہوں نے اس پورے پروپوزل کو ویلکم کیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ویسے ہمارا تو کوئی زور ہے نہیں حزب اللہ کے اوپر, لیکن ہم ان کے ساتھ بات ضرور کر سکتے ہیں. نتن یاہو صاحب کی مشکل یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے کوئلیشن گورنمنٹ ہے, مائنورٹی گورنمنٹ ہے. نیشنل سیکیورٹی منسٹر اتمر بن گویر جو ہیں, آلسو ہیڈ آف دا جوئش پاور پارٹی, انہوں نے کہا کہ اگر تم نے سیز فائر کیا تو ہم تمہارا جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں گے, اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی مائنورٹی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی, تو یہ ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں آج بات کرتے ہوئے پیلسٹینین اتھارٹی کے ہیڈ جو ہیں محمود عباس, انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑے آپ ڈناؤنس کرتے ہیں یہ غزہ کے اندر جو اوفینسو چل رہا ہے یو این جی اے کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ یہ جینوسائڈل وار ہے جو کہ اسرائیل کر رہی ہے, یہ ہمارے باپ دادوں پر دادوں کی زمین ہے, ہم اس کو بالکل چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم یہیں پہ رہیں گے. ہاں اگر کسی کو زمین کو چھوڑ کے جانا ہے تو وہ آکیوپائنگ یوزرپرز ہیں جنہوں نے کہ یہ پاور ہم سے یوزرپ کی ہے اور ہماری لینڈ کو جو ہے آکیوپائی کیا, یہ چھوڑ کے جائیں گے. اور آج انہوں نے 3 بار دہرایا وی ول ناٹ لیو, وی ول ناٹ لیو, وی ول ناٹ لیو, ایسے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اپنے ایڈریس میں کہا. اچھا جناب, اچھی خبر آپ کے لیے اور ماڑی خبر جو ہے مڈل ایسٹ کے لیے. رائٹرز کی یہ خبر آئی ہے جی کہ آئل پرائسز گر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ انفلیشن سے جوجھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ اچھی نیوز ہے, بالکل ہے نا. تو آئل پرائسز گر رہی ہیں کیونکہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے, ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی ہے, لیکن یہ نئی رپورٹ جو ہے رومر آپ سمجھ سکتے ہیں یا اسپیکولیشن سمجھ سکتے ہیں, یہ آیا ہے کہ سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا پروڈکشن جو ہے لیٹر دس ایئر سے آئل کا وہ بڑھا رہا ہے. اب جبکہ یہ نیوز آئی ہے تو یہ اس میں لوگ بڑے حیران ہوئے ہیں کیونکہ اوپیک پلس جو ہے اس میں 8 دوسرے کنٹریز بھی ہیں, سعودی عربیہ نہیں ہے. تو سعودی عربیہ نے یہ کیسے اناؤنس کیا کہ وہ ٹیمپرریلی جو پہلے انہوں نے اگری کیا تھا کہ ہم پاز کریں گے یہ جو آئل کا آؤٹ پٹ ہے تاکہ پرائسز اوپر جائیں, تو ڈرامیٹیکلی اب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم آئل کا جو ہے پروڈکشن بڑھائیں گے. انٹرنیشنل بینچ مارک برینٹ کروڈ جو ہے وہ آج گرا 2.8% سے 271.40. یو ایس بینچ مارک ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ بھی آج گرا 3.06% سے 267.56 ڈالرز, اور پرائسز جو ہیں وہ نیچے ہیں نیئرلی 6% اوور آل, اور اس سال میں ذرا نیچے ہی چل رہی ہیں ابھی تک پرائسز. یہ اگر انہوں نے انکریز کی آؤٹ پٹ سعودی عربیہ نے تو آئل کی پرائسز اور زیادہ نیچے آئیں گی. یہ دس ڈیفینیٹلی از اے سورس آف کنسرن فار اوپیک پلس, یہ جو آئل پروڈیوسرز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی فار کنزیومرز اٹ از بگ 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 ہیپی نیوز, ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں, ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے. اور جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر نازیہ رحمان. ڈاکٹر نازیہ رحمان جو ہیں بڑی زبردست آپ کو ڈینٹسٹری کی سروسز دیتی ہیں, اور آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان کے کلینک پہ 65 مونٹ پیلیئر اسٹریٹ یونٹ E104 کے اوپر برمپٹن میں ہیں. ان کو کال کر لیں ایٹ 9058721100. اور جناب راجہ بادشاہ آل اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ڈھیروں پیسے بچائیں گے وہ 1775 عامر کی طرح, لیکن آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ بنا لیں. ان کا نمبر ہے 6472903773 اینڈ چاندنی وکٹوریا بینکوٹ ہال. زبردست قسم کے یہاں پہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کھانے, اور ایمبیئنس بھی زبردست ہے کیونکہ زبردست قسم کی ڈیکور ہے. اس کے علاوہ انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گولف کورسز کی فیسلٹیز بھی یہاں پہ ہے, تو آپ کو اپنا کوئی بھی چھوٹا بڑا ایونٹ کرنا ہے تو آپ ان کو کال کریں. اور ہے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈلی لوکیٹڈ ہے یہ ڈریو روڈ کے اوپر, آپ ان کو کال کر لیں ایٹ 9054588888 کے اوپر. ٹھیک ہے جی, پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے آج جو ہے وہ یو این جی اے کے ساتھ پہ خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل کے اوپر جو ہے سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ آرمز اور ٹریڈ ایمبارگو بھی اس کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو جینوسائڈل ایکٹس کر رہے ہیں پیلسٹینینز کے اگینسٹ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کر رہے تھے ایک ہائی لیول اوپن سیکیورٹی کاؤنسل ڈیبیٹ میں آن لیڈرشپ فار پیس میں آن دا سائڈ لائنز آف 79th یو این جی اے سیشن. انہوں نے کہا جی کہ بالکل اسرائیل کو کمپیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے یہ پروکیٹو اور یہ جو مار دھاڑ والے یہ جو ایکشنز ہیں ان کو بالکل ختم کرے, اور انہوں نے وہ بھی کنڈیم کیا کہ یہ جو لیبنان میں اب اس نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا, یہ پیلسٹینینز اور لیبنیز کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ارج کیا سپریم سیکیورٹی کاؤنسل کو, انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک امپارشل پلان بنائیں اس کا سیز فائر کا, اور اسی طرح جو وار یوکرین کے اندر چل رہی ہے اس کا بھی آپ ایک پیسفل سولوشن لے کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اور یورپ میں جہاں جہاں کہیں پہ جو ٹینشنز چل رہی ہیں تو یہ ان کو ختم کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا میں پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ لاسٹ سنڈے کو آپ نے اپروو کیا تھا پیکٹ فار فیوچر, تو فیوچر کو تو ہم کو بالکل بلیک نظر آ رہا ہے اور بڑا ڈینجرس نظر آ رہا ہے اگر آپ نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کی. اس کے علاوہ انہوں نے جموں اور کشمیر کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ یہ بھی انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا کہ وہاں پہ بے تحاشا فنڈامنٹل رائٹس جو ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے کشمیریوں کی, تو وہاں پہ اپنے ریزولوشنز کے مطابق آپ ایک پلیبسائٹ ہولڈ کروائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو افغانستان سے پاکستان کے اندر ٹیررزم آ رہا ہے, داعش جو لے کر آ رہا ہے اور فتنہ الخوارج لے کر جو آ رہے ہیں, تو ان کو بھی آپ روکیں اور اس کے لیے کچھ پالیسی بنائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جی اس نے اب ایک اور نئی پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈال دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کس کو فالو کریں. آپ نے جو اتنا لمبا چوڑا ورڈکٹ دیا ہے ریزرو سیٹس پہ اس کو فالو کریں, یا الیکشن ایکٹ 2017 کو فالو کریں, یا جو اس کے اندر امینڈمنٹ آیا ہے اس کو فالو کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان کا اپنی پلی جو ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ایاز صادق صاحب کا لیٹر بھی, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر چینجز آئی ہیں اس لیے جو ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دے سکتا ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا جی کہ اب کس کی ہم بات مانیں, بھئی ہم جو ہے وہ ایاز صادق کی مانیں, الیکشن ایکٹ مانیں, یا آپ کا جو ریزروڈ سوری آپ کا جو ورڈکٹ ہے ڈیٹیل اس کو ہم مانیں. پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے آج بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور کو, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت ہی گندی قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں, خاص طور پہ میرے خلاف بہت زیادہ خراب لینگویج وہ یوز کرتے ہیں, اور انہوں نے وارننگ ان کو دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے لاہور میں آ کے یعنی پنجاب میں آ کے کوئی بھی کسی قسم کا لا توڑنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ اچھے طرح سے نپٹیں گے, اور آپ یہ جو فضول قسم کی باتیں دیتے رہتے ہیں یہ میننگ لیس آپ کے فریزز کا کچھ زیادہ مطلب نہیں ہے, تو آپ تو چیف منسٹر ہیں, آپ ایسی خراب لینگویج یوز کریں گے تو آپ نیشن کو کیا سکھائیں گے, لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ خراب طرح سے بیہیو کریں گے اور آپ AK-47 کو لے لے کے لہرائیں گے, گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے, تو آپ لوگوں کو کیا سبق دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب کے لوگ تو بڑے شانت تھے, آپ ان کو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ آ کے ان کو جو ہے بہت زیادہ شی دے دے کے. اور اس کے ساتھ انہوں نے आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर ये बात कर रही थी, जहां पे कि उन्होंने लॉन्च किया एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम। उन्होंने कहा जी कि 5,000 के करीब हमको एप्लीकेशन आए थे, लेकिन 1,000 ही हम इंटर्नशिप्स दे सकते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और इंटर्न्स को, स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स दे सकते हैं, और उनको लेटर्स भी दिए। और उन्होंने कहा जी कि ये जो दिए गए हैं ये सारे के सारे बच्चे जो हैं अंडर 25 हैं, और उसमें से 25% जो हैं औरतें हैं, तो हम बढ़ावा देना चाहते हैं एग्रीकल्चरल जो एजुकेशन है उसको। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम फार्मर्स के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब कभी ऐसा बना नहीं होगा, क्योंकि फार्मर्स जो हैं बहुत ज्यादा इनजस्टिसेस फेस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने आज बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि भई मैंने क्यों रिमूव किया जस्टिस मुनीब अख्तर को फ्रॉम जजेस कमेटी, और मैंने जो है ये जो हैं इनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उनको इनकी जगह के ऊपर क्यों रखा। वो एक लेटर का जवाब दे रहे थे जो कि एक जूनियर जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने उनसे पूछा था कि आफ्टर न्यू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 आपने जो है इनको क्यों नॉमिनेट जो है वो किया है, और जस्टिस मुनीब को क्यों रिप्लेस किया है फ्रॉम जजेस थ्री मेंबर जजेस कमेटी। तो इन्होंने कहा जी कि अख्तर साहब जो हैं वो उन्होंने एक तो जिस वक्त ये बिल आया, ये जिस वक्त ये अमेंडमेंट आ रही थी ऑर्डिनेंस में, उसको बहुत ज्यादा अपोज किया था, और ये वन ऑफ टू जजेस थे जिन्होंने कि इसके खिलाफ बात की थी। उसके अलावा जो है ये बस सारी की सारी गर्मी की छुट्टियां जो हैं ये अवेल करते हैं, लंबी लंबी छुट्टियों पे चले जाते हैं, और फिर इनके जो केसेस हैं वो पायल होते रहते हैं, बड़े रूड हैं, अनरीजनेबल इनका बिहेवियर है, जब कभी कोई मीटिंग्स हो रही होती हैं तो बदतमीजी करते हैं मेंबर्स ऑफ जुडिशरी से, मीटिंग्स छोड़ के चले जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो है बहुत सारे केसेस फटाफट 11 बजे से पहले पहले निपटाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह सुनते भी नहीं है, जिसके के ऊपर दूसरे जजेस का बड़ा कंसर्न आ जाता है कि भाई ये क्यों फटाफट ऐसे खत्म कर रहे हैं, सुन तो लें पूरी तरह से केसेस को, पूरी तरह से सुनते ही नहीं है। इसी तरह जो ऑडियो लीक्स का केस था वो भी इन्होंने बस जो है वो उसका स्टे ऑर्डर दे दिया और पूरी तरह से सुना ही नहीं, और कोई हियरिंग के लिए डेट्स भी फिक्स नहीं की। तो इस तरह के वो कहते हैं जी कि लोगों के लिए फिर जो है हमारी जुडिशरी में जगह नहीं है। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जरूर डायलॉग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कभी हुआ नहीं है, इससे पहले भी डायलॉग हुए हैं और अब भी हमको एंगेज करना चाहिए। एक प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल हमारे साथ उनके रबते होते रहते हैं, बात हमसे होती रहती है और हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हम उनके साथ बात करेंगे, एंगेज करेंगे, और इससे पहले भी हमने किए। अब ये जो इनका रऊफ हसन साहब का जो कमेंट है आज का, ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इमरान खान साहब है, क्योंकि अडाला जेल में कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था जी कि हम बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। अलबत्ता रऊफ हसन साहब ने आज कहा कि हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड एक एनवायरमेंट जो है उसको कंड्यूसिव बनाया जाए और दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एफर्ट करें कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। और उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये होएगा। पाकिस्तान जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमीज को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त किस्म के मेजर्स लिए हैं। इसका खुलासा किया फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारर साहब ने, और उन्होंने ये बात उस वक्त की जब आईएमएफ ने ओके कर दिया है $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है पाकिस्तान की एफर्ट्स को टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन जो है वो बिल्कुल उसको मानती है, हमारे बड़े गवर्नमेंट के प्रूडेंट पॉलिसीज हैं, उसी की वजह से जो है इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, डेली कमोडिटीज की चीजें जो है वो स्टेबलाइज हो रही हैं, हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं और लोगों को जो है रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यही शो कर रहे हैं कि वो सारे पॉजिटिव हैं और ये जो इन्फ्लेशन है ये इमेजिनरी नहीं है कि नीचे आई है, बल्कि ये वाकई नीचे आई है, और उसमें मेन वजह जाहिर है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी हैं जो कि नीचे आई हैं। आने वाले दिनों में हमारी पॉलिसीज और आपको खुल के सामने नजर आएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो क्रैकडाउन है हम इलीगल मनी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा डॉलर जो था उसको स्मगल कर दिया जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी आ रही है, एक चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 3 लाख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी। इसके अलावा गूगल जो है उसने भी हमें कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और पाकिस्तान के अंदर क्रोम बुक्स बनाएंगे। आमिर, ये तो बिग न्यूज है, ये अगर सच है, अगर ये कहानी नहीं है, दिस इज बिग अचीवमेंट भाई, आई मस्ट से दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, बिग थिंग। अगर अगर गूगल आ रहा है और वो कह रहा है कि क्रोम बुक्स पाकिस्तान में बनाएगा तो वाकई
गवर्नमेंट, गूगल भी आ रहा है। और शायद इसमें एक न्यूज कर लेते हैं, बहुत दिनों से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स के बच्चों को काफी पेमेंट्स के इश्यू होते हैं, तो आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस न्यूज, پے پال بھی پاکستان میں آ رہا ہے
انشاءاللہ انشاءاللہ او واو دیٹ از بگ نیوز دیٹ از ایبسولیٹلی بگ نیوز اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے بہت سارے آئی ٹی سٹیز بنا رہے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر میں اور اس کے علاوہ ہم اسمارٹ فون پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کریں گے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ ہم آئی ٹی کے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بوسٹ کریں گے بھائی واہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو سلام ہے آپ کو میرا سلام ہے آپ کو میں آپ کے بڑے خلاف بولتی تھی لیکن آپ کو میرا سلام ہے اگر آپ ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے اگر یہ ایسا ہو جائے تو پاکستان جو ہے ایک دم سے لیپ لے لے گا انشاءاللہ 50 ایئرز آگے چلا جائے گا پاکستان ہندوستان کے اندر بھی جناب جو ہے مارا ماری چل رہی ہے اور آج پھر سے اور مارا ماری کس کے بیچ میں چلتی ہے آپ کو پتا ہی ہے بی جے پی اینڈ کانگریس آج پھر بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور یونین منسٹر ہیں جے پی نڈا انہوں نے آج پھر سے کانگریس کے اوپر بے تحاشا جو ہیں اعتراض کیے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہیں کانگریس والے جو ہیں یہ اربن نیکسلز ہیں اور آج یہ ایک ممبرشپ ڈرائیو پہ اوڈیسا کے اندر بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ کانگریس ہمیشہ انکریج کرتی ہے ایسے فورسز کو جو ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمیشہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ جوڑنے کی کرتا ہے یہ ہمیشہ اکیلے کام کرنے کے لیے بات کرتے ہیں بی جے پی ہمیشہ سب کے ساتھ مل کے بات کام کرنے کو پریفرنس دیتا ہے ہم بلیو کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس کانگریس اس کے اوپر بلیو نہیں کرتی ہے ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کوئی پریویلیج کلاس کا ہی بچہ جو ہے وہ اوپر آ کے لیڈر بنے گا جیسے کہ کانگریس کے اندر ہے ہمارے اندر جو ایک چھوٹا ورکر بھی ہے وہ بھی اوپر آ سکتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت بی جے پی کی ممبرشپ کہاں پہ کھڑی ہے تو انہوں نے کہا جی اس وقت بی جے پی کے پاس 18 کروڑ ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں ہر کسی کو چاہے مودی جی ہیں چاہے کوئی بھی ہے اس کو ری رجسٹر کرنا ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ ایوری 6 ایئرز تو ہر کسی کے اوپر یہ مینڈیٹری ایسے نہیں ہے کہ جو بگ وگز ہیں پارٹی کے وہ ان کو نہیں کرنا ہر کسی کو کرنا ہے تو ہم جو ہے گراس روٹ لیول سے کام کرتے ہیں ہم کوئی پریویلیج کلاس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ کانگریس نے بھی ان کی کسی بات پہ اعتراض تو کرنا تھا کانگریس نے دے ہیو یو نو سلامڈ بی جے پی کے جو ایم پی ہیں نشی کانت دوبے جنہوں نے کہ یہ کہا تھا کہ جی ان کو بہت ہی میسو فیڈ بیک ملا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی پہ وقف کا امینڈمنٹ جو بل لائے تھے اس کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ہے جے پی سی کے چیئرمین ڈوبے صاحب نے اس میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ آرگنائزیشنز لوگ اور جو فارن پاورز ہیں جن کا کہ تعلق پاکستان کی آئی ایس آئی کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ہے وہ یہ میسو سبمیشنز جو ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ وقف کا جو قانون ہے اس کو چینج نہ کیا جائے اور اس کے اندر کانگریس جو ہے وہ آگے آ گیا کانگریس نے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈوبے صاحب نے یہ کیسے یہ باتیں کہی ہیں اور جو بھی یہ کوئی بات کر رہے ہیں کیا بی جے پی اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی بھی ہے کہ یہ جھوٹے الزام لوگوں کے اوپر لگاتی رہتی ہے اے آئی سی سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے کانگریس کے اسپوکس پرسن اس میں شکتی سنگھ گوہل جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کنٹری ہے اور اس میں اگر 1.5% لوگ بھی اپنا اوپینین جو کہ بی جے پی کے ساتھ نہیں ملتا ہے وہ دے دیں تو بی جے پی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے بی جے پی کو انہوں نے کہا جی کہ یہ منینز ہیں اور یہ واٹس ایپ گروپس کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ جو ہے ان کا فیڈ بیک جو ان کی کمیٹیز ان کو اس پہ واٹس ایپ پہ دیتی ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں جو آن گراؤنڈ جو ہے جو سینٹیمنٹ لوگوں کا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ہے اصل میں مدے سے ہٹنا آتا ہے جو ملک کے اندر اتنی بے تحاشا ہندوستان میں ان امپلائمنٹ ہے اتنی بے تحاشا کرپشن ہے اس کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں یہ بس ہندو مسلم ایشوز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں تاکہ مین مدوں سے اٹینشن کو ہٹایا جا سکے لوگ سیدھے ہیں لیکن اتنے بھی اب سیدھے نہیں رہے کہ بی جے پی کے یہ گیمز جو ہیں یہ نہ سمجھ سکیں ہیں جی تو جناب یہ باتیں چل رہی ہیں اور جناب ہسٹورین مکھن لال صاحب جو ہیں ان کا آج انٹرویو لیا گیا ہے کیونکہ ان کو خاص طور پہ سی بی ایف سی نے اپوائنٹ کیا تھا کہ کنگنا رناوت صاحبہ کی جو فلم ایمرجنسی آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ پنجاب میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر بڑے ڈسٹارٹ کر کے فیکٹس جو ہیں بیان کیے گئے ہیں ہسٹورین مکھن لال جو ہیں ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ ہیں ہندوستان میں اور اسی لیے جو سینسر بورڈ تھا اس نے کہا کہ آپ یہ فلم دیکھو اور آپ ہم کو بتاؤ کہ یہ اس کو کیا रिलीज किया जा सकता है या नहीं। मक्खन लाल साहब ने आज कहा है कि ये फिल्म बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, सारे का सारा इसके अंदर ट्रूथ है और ट्रूथ को बिल्कुल ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी का जो है उसका रोल बड़े ही पॉजिटिव लाइट में दिखाया, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स जो है वो इंदिरा जी से बहुत प्यार करते थे तो तभी उन्होंने ये उनके लिए इतनी प्यारी फिल्म बनाई है। वो कहते हैं जी हर पोलिटिकल लीडर में हालांकि बहुत सारे नेगेटिविटीज और बहुत सारे फ्लॉज होते हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि वो फ्लॉज इस मूवी में किसी फिल्म मेकर ने सामने लाने की कोशिश की है। सेंसर बोर्ड जो है उसने अब एक एफिडेविट फाइल किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में और उन्होंने उससे पूछा है कि क्या हम ये फिल्म रिलीज कट्स के साथ कर सकते हैं। कंगना रनावत कहती है कि कट्स के साथ मैं अपनी फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगी। पर बाजी तो बाजी है ना, फिर पता ही है आपको ऐसे है। और जनाब आज तक आपको पता ही है कि कपिल शर्मा शो जो होता था बेतहाशा जो है वो पॉपुलर होता था लेकिन अब लग रहा है कि कपिल शर्मा शो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा। अब ये जो उन्होंने नया सीजन टू अब शुरू किया, पहले सीजन वन आया था द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो, अब जो सीजन टू आया है ग्रेट कपिल शर्मा शो का जिसका कि प्रीमियर अभी रिसेंटली एक एपिसोड के साथ हुआ था, उसमें पता चला है कि व्यूअरशिप इनकी सीजन वन के ओपनर से बेतहाशा गिर गई है। सीजन वन का जो ओपनर था उसके अंदर आए थे रणवीर कपूर, नीतू सिंह और रिधिमा कपूर और ये जो सीजन खुला है इसके अंदर आए थे आलिया भट्ट, करण जौहर, विदांक रायना, वेसन बाला अपनी फिल्म जो है जिगरा उसको प्रमोट करने के लिए। व्यूअरशिप नंबर्स जो है अलबत्ता सीजन टू के बेतहाशा गिरे हैं जो कि आया था ऑन सितंबर 22 नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट के अंदर अब इसका नंबर जो है वो 8 पे है इन नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट जो कि लास्ट वीक आई थी क्योंकि अब इसको सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूअर्स जो हैं वो देखते हैं। सीजन वन जो था वो ओपन हुआ था 1.4 मिलियन व्यूज के साथ तो सीजन वन के अंदर ये लिस्ट में तीसरे नंबर पे थे जो अब गिर के 8वें नंबर पे आ गए हैं और वो कहते हैं जी कि इनकी व्यूअरशिप भी नीचे 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 आती जा रही है। पहले जो थी 1.7 थी, फिर 1.4 और अब जो है 1.2 लास्ट वीक जो है उसमें है। हालांकि जो इनका जो थर्ड वीक था उसमें तो बड़े ही इम्पोर्टेंट लोग आए थे, दिलजीत दोसांझ की पूरी टीम आई, दिलजीत दोसांझ की जो अमर सिंह चमकीला की जो पूरी टीम है वो इसमें आई हुई थी, फिर भी ये अभी तक बूस्ट इसको नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हालांकि सीजन टू जो है उसके अंदर अभी तक देखे गए हैं जो लोग वो हैं विकी कौशल, आमिर खान, नहीं जो सीजन वन था, सीजन वन में जो देखे गए थे लोग वो थे विकी कौशल, आमिर खान, सनी देओल एंड बॉबी देओल, एड शीरन, अनिल कपूर, फराह खान, जानवी कपूर, राजकुमार राव, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, लेकिन फिर भी सीजन वन भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन सीजन टू ने तो और भी इसको नीचे लेकर आया है। इसके साथ साथ सीजन वन में पूरी की पूरी हीरा मंडी की टीम जो थी उनके डायरेक्टर के साथ आए थे तो ये शो लग रहा है कि अब इतना ज्यादा मकबूल नहीं है। और जनाब शाहरुख खान साहब पहुंच गए हैं अबू धाबी आईफा अवार्ड्स के लिए। जब वो अभी एयरपोर्ट पे ही पहुंचे थे तो लोगों ने उनको मॉब किया, इतना ज्यादा उनके घेरे में ले लिया कि वो गिरने लगे थे, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और जो उनके आसपास लोग थे गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने साइड पे लोगों को किया। लेकिन जो आईफा का जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर बड़ी इनकी प्यारी तस्वीरें इनके कमरे की आई हैं कि कैसे इनको जो है किया जा रहा है, सारे जो स्टार्स हैं उनको भी लेकिन खास तौर पे शाहरुख खान साहब को कैसे पैम्पर किया जा रहा है। इनका कमरा उन्होंने दिखाया है एट हिल्टन अबू धाबी यास मरीना आइलैंड के ऊपर जो है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट्स हैं वहां पे, इनकी बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर्स हैं और फिर बहुत सारे लोगों के वेलकम नोट्स हैं और फिर जो है ट्रफल फ्लेवर्ड चिप्स हैं और भी बेशुमार चीजें हैं। तो आज उसके ऊपर देख के फैंस ने ये सारी चीजें देख के कहा, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान साहब क्या आप हमारे साथ ये सारा कुछ शेयर करोगे ऐसे है। और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो रेड बॉल हेड कोच हैं जेसन गिल्स भी, उन्होंने कहा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्यार दिखाओ अपनी टीम के साथ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और फेथ उनके अंदर दिखाओ। आज कमेंट्री कर रहे थे चैंपियंस कप मैच जो शुरू हुआ था लायंस और स्टेलियंस के बीच में, उसके बीच में तो उन्होंने कहा जी कि हम यार ये जो स्क्वाड है ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है जो कि खेल रहा था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आपको फेथ और बिलीफ अपने प्लेयर्स में रखना पड़ेगा। और ये जो आपके नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, एक अच्छा गेम तो आप कहते हैं वाह वाह, एक बुरा गेम तो आप उनको बिल्कुल ही रद्दी कर देते हैं, तो ये आप ऐसा मत करो। कभी अच्छा भी खेलेंगे कभी बुरा भी खेलेंगे, लेकिन आप उन पर बिलीफ रखो क्योंकि ये लड़के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और इन्होंने अच्छे खेल का जो था एक रिफ्लेक्शन आपको शो किया था इन द फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश एंड रावलपिंडी। तो लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूं कि इनको ये अच्छी जो गेम है ये बार 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 कंसिस्टेंटली शो करनी पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा उनको ट्रस्ट दो, आपका ट्रस्ट जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स देंगे। और जनाब सेकंड टेस्ट जो होगा इंडिया के खिलाफ कानपुर में कल फ्राइडे को यानी के बांग्लादेश के साथ, उसमें बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बार खेलूंगा। क्रिकेटर जो हैं ये बहुत ज्यादा आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ बांग्लादेश में इनको कहा जाता है, लेकिन इन्होंने ज्वाइन कर ली थी शेख हसीना की अवामी पार्टी अवामी लीग, उसकी वजह से इनके ऊपर काफी जो है बैकलैश आया था और इन्होंने कहा जी कि मैं, और उसके बाद से फिर जाहिर है कि ये घर भी नहीं जा सके हैं। आपको पता ही है कि ये आखिरी मैच अपने जो खेलने के बाद लंदन चले गए थे और फिर उसके बाद लंदन से आए थे इंडिया में खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि हालांकि मुझे बहुत सारी अश्योरेंसेस दी हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि मैं अगर वापस आया तो मुझे हरास नहीं किया जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हरास नहीं भी किया गया तो क्या मैं मुल्क को फिर से छोड़ के जो है मैं जा सकूंगा, कि ऐसा ना हो गया, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि ईसीएल में इनका नाम जो है वो डाल दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूं और मैं बिल्कुल साउथ अफ्रीकन जो सीरीज है उसके लिए मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं, लेकिन अगर आप मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। लेकिन आज इन्होंने T20 से तो अपना बिल्कुल रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। उन्होंने कहा जी अब T20 तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर मोहम्मद आसिम खान। ही हैज रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ शार्लट्सविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट। इन्होंने डिफीट किया सेकेंड सीडेड इजिप्शियन प्लेयर याहिया एलानासानी को इन वर्जीनिया में, और इन्होंने जो है वो जो इनकी जो गेम्स थी इनके साथ, ये जो क्योंकि याया जो था ये भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर था और इसके अंदर इनको काफी डिफिकल्टी आई, खासतौर पे जो गेम 2 थी, ये 5 गेम इन्होंने खेली, जो सेकंड गेम थी वो तो 60 मिनट्स तक चलती रही। तो भारत जी आसिम ओवरवेल्म्ड हिम एंड क्वार्टर फाइनल जो है उसमें पहुंच गए हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल में अब ये कैसा प्रदर्शन दिखाएंगे,
कैसा प्रोडक्शन दिखाएंगे,
प्रोडक्शन
परफॉर्मेंस क्या बात है, सीख रहा हूँ आप,
ठीक है ना, बस साढ़े नाल रोगे तैयार करोगे
ऐसा
प्रोडक्शन है इनका,
वक्त ही बताएगा।
नहीं तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारी खुशकिस्मती है तुम मेरे साथ काम कर, कुछ भक्ति है तुम काम कर, मेरी वजह से तो तुम्हें जन्नत मिल रही है आमिर, इससे और ज्यादा बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और तुमने ऐसा जो है
यही गुनाह पूरे हो रहे हैं,
घुमा दिया है मेरे मियां को भी कि उसने भी अपने जन्नत के प्लॉट में तुम्हें हिस्सा दे दिया है।
वो इसलिए कि हम तो सिर्फ आपको 8-9 घंटे 10 घंटे जो भी हमारा आपका सिलसिला हाँ। होता है वो तो बेचारा बाकी के घंटे बंदे ने हमारे भाई नहीं संभाले,
सोच लो फिर सिर्फ 8 घंटों के लिए वो राजी हो गया तुम्हें अपने साथ जन्नत में रखने के लिए, प्लॉट दे दिया,
उनका बड़ापन है और इसी पर मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसी वजह से कि जहर को जन्नत तो कोई शेयर नहीं करेगा,
नहीं कोई नहीं करेगा, देखो
लेकिन जहर उनका
बीवी के साथ शेयर नहीं,
दुख बहुत बड़ा है उनका दुख,
अब वो अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं कर रहे तुम्हारे साथ कर रहे हैं
क्योंकि उनका दुख बहुत बड़ा है और मैं उस दुख में उनका पैनाडॉल हूँ, ठीक है ना,
तो इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो मेरे साथ काम कर रहे हो।
ये तो तमाम सामेईन और नाज़रीन बताएंगे जनाब, तो ये खट्टी मीठी खबरें आपने सुनी, आई होप कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही काम कर रहा होगा, अब आपका होमोग्लोबिन लेवल भी पूरा सही हो गया होगा और जो आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले थे वो भी खत्म हो गए होंगे, उम्मीद यही करते हैं, और आपका हमारा ये सफर ऐसे ही सेहतमंद रहे इसीलिए हम आपको ये खबरें सुनवाते हैं ताकि आपकी बीमारी दूर दूर तक जिंदगी में आपकी कोई भी बीमारी ना रहे,
ठीक है
ना, क्योंकि विटामिन्स का काम करती
है। जैसे आपने गला ना कर गाना सुनाओ, कोई गाना सुनवा सन कोई प्यारा सा गाना,
ये डांट लगा देती है अब ऐसा करते हैं, टाइम तो खैर चलिए दो चार मिनट के लिए गाना एक मैं सुना देता हूँ,
प्यारा
फतेह अली खान साहब की आवाज में गाना सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 7:30 बजे तक हम और आप ऐसे ही साथ रहेंगे, तो एक हल्का फुल्का सा गाना प्रोग्राम में शामिल कीजिए। वापस आते हैं, हमारा नंबर
सूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल दशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन मुमकिन नहीं आपरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आपरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं.
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक सुनेहा ब्रैम्पटन नु माण है शानदार कलाकारा समूहा ते संस्थावा दे जश्न मनाउन दा जो कि मुफ्त ते दिलचस्प कला दे तजर्बे भाईचारे विच ल्यांदे हन. जेकर तुसी भी एक वर्कशॉप अजमाउन विच दिलचस्पी रखदे हो जां फिर एक कलाकार गलबात विच शामिल होना चाहुंदे हो जां फिर नवे हुनर नु सिखना जां प्रदर्शन करना चाहुंदे हो तां सभ्याचारक दिनां दौरान यानी कि 20 सितंबर तो 13 अक्टूबर तक हर एक अते हर उम्र लई कुछ ना कुछ है. होर जानकारी लई brampton.ca/culturedays ते जाओ. अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल की जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता. सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन.